डॉक्टर स्वामीनाथन जी भाई साहब का संक्षिप्त में परिचय देंगे। आप अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल स्पीकर एवं ट्रेनर हैं। आपने महाराष्ट्र विधानसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर ध्यान सत्रों का संचालन किया है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, VSPF, CRPF, CISF, NSG, CBI, रैपिड एक्शन पुलिस बलों को और कुछ विदेशी पुलिस एकेडमियों को लिए सत्र आयोजित किए हुए हैं। आपने सियाचित युद्ध क्षेत्र, भारत पाकिस्तान की जो चीन सीमा है, में परीक्षण देने का भी अद्वितीय अनुभव लोगों को साझा किया है। अवेकनिंग और पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपका मोटिवेशन मिलता रहता है। आपने IIT खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, हैदराबाद और IIM लखनऊ, अमृतसर, JNU और NIT में छात्रों को प्रशिक्षित किया हुआ है। और आप BTech मैकेनिकल इंजीनियर है, MSc, MBA, PhD, PGDH और DDH, PGDH, NDYD, प्राकृतिक चिकित्सक और योग में डॉक्टरेट है। और आपकी मुख्य विशेषता है कि आपने 30 वर्षों से इस राजयोग में, राजयोग मेडिटेशन कराने में और सबको मोटिवेशन करने में आप इस समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे हमारे भाई साहब जो खुद जागरूक है और लोगों को मोटिवेट करते हैं, ऐसे आज के विषय जो है हमारी थीम साइंस ऑफ सेल्फ लीडरशिप, खुद पर नेतृत्व कैसे करना, इस पर हमें प्रकाश डालेंगे आदरणीय डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई साहब।
ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी भाई बहनों का आज के इस प्री इनॉग्रल सत्र में, द साइंस ऑफ सेल्फ लीडरशिप इस सेशन में, बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आई एक्सटेंड अ वेरी हार्टी वेलकम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। शुरू करने के पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस सभा में ऐसे कितने भाई बहन बैठे हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर में इस प्रकार का सेशन अटेंड कर रहे हैं, वो मुस्कुराते हुए हाथ उठाएं। वाह, वंडरफुल। आई कैन सी भारतवासी तो हैं, लेकिन वी हैव सम वंडरफुल फ्रेंड्स फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल होली कंट्री ऑफ नेपाल ऑल्सो। हम आप सभी का बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। और जब मैं आप सभी को देखता हूँ तो मुझे अपने वो दिन भी याद आते हैं, माई स्वीट मेमोरीज विद द ब्रह्मा कुमारीज। जिस स्थान पर आज आप पहली बार बैठे हैं, मैं 30 वर्ष पहले इसी तरह साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के कॉन्फ्रेंस में आया था, 30 इयर्स बिफोर, वे बैक इन 1996। और जब मैं ये पिछले 30 वर्षों को मुड़कर देखता हूँ तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उस समय जब मैं आया था तो वैसे यंग इंजीनियर के स्वरूप में आया था, लेकिन आज आपके सामने बैठता हूँ तो मैंने महसूस करता हूँ कि 30 इयर्स हैज़ बीन सच वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। भारत का जो प्राचीन विधि और योग है, जिसमें भगवत गीता में भी इसका जिक्र किया है, विच इज कॉल्ड एज द एंशंट विजडम ऑफ राजयोगा, उसको समझना, उसको सीखना, और आज भी मैं उसको धीरे धीरे अपडेट और अपग्रेड करने की मैं कोशिश करता हूँ। राजयोग दो शब्द से बना हुआ है, एक है राज मीन्स रहस्य, द सीक्रेट। और आज जो हमारा कॉन्फ्रेंस का जो की थीम है, इनर मास्टरी कहो या सेल्फ लीडरशिप का वो रहस्य, मुझे इस मेडिटेशन की यात्रा में समझ में आया। एक स्थूल रूप से भी यात्रा करने का सौभाग्य मिला। कुछ वर्ष पहले द मिनिस्ट्री फॉर डिफेंस, इंडियन आर्मी ने ब्रह्मा कुमारीज की एक टीम को विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि, जिसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, भारत पाकिस्तान चाइना के संगम पर, वहां पर जो सैनिक और जवान हैं उनके तनाव को समझना और तनाव का समाधान करने के लिए मेडिटेशन सिखाने के लिए टीम को जाने के लिए कहा। ये 4 मेंबर टीम था और इसमें स्वामी भाई का एक सौभाग्य था कि मेरा भी सिलेक्शन हो गया। और जब मैं विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में पहुंचा, वहां पर इट इज एट अ हाइट ऑफ 12,000 फीट टू 28,000 फीट अप, 12,000 फुट से लेकर 28,000 फुट पर। 12,000 फुट में उनका एक स्कूल है जिसको SBS कहते हैं, सियाचिन बैटल स्कूल, जहां पे सैनिक और जवानों की ट्रेनिंग होती है। जैसे जैसे वो शरीर से और मन से अपने आप को तैयार करते हैं, उनको 12 से 14, 16, 18 ऐसे 28,000 तक लेकर जाते हैं। आपको इस हाइट का अगर अंदाज लगाना है तो जिस आप माउंट अबू के ज्ञान सरोवर में बैठे हैं वो 4,000 फुट पर है। तो बताइए, अगर आपको सियाचिन जाना होगा तो एक के ऊपर एक कितना माउंट अबू बिठाना पड़ेगा, जरा बताइए कितना, हाउ मेनी नंबर्स। वाओ, आप लोग हो तो बड़े बुद्धिमान, इसलिए इंजीनियर साइंटिस्ट तो बने हो। 7 माउंट अबू ऑन एक के ऊपर एक, -53 to -83 degrees centigrade। क्योंकि एक थोड़ा सा स्टडी भी था, उनके तनाव को समझना भी था, तो जब हम उनके सैनिक जवान ऑफिसर्स से मिले तो हम उनसे पूछे कि आपका दुश्मन यहां से कितना दूर है, क्योंकि इतनी धुंध होती है कि करीब ठंड के समय पे, नवंबर दिसंबर के समय पे तो 3-4 फुट कोई सामने खड़ा होता है, वो भी दिखाई नहीं देते। तो वहां पर एक मेजर साहब मिले, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा, स्वामी भाई, विश्व के सबसे ऊंचाई के युद्ध भूमि में यह जानना जरूरत है कि हम युद्ध कर किससे रहे। तो मैंने कहा, भाई किससे करते, सामने वाले दुश्मन से ही तो करते ना, पड़ोसी देश से ही तो कर किया जाता है युद्ध। बोले नहीं। और उन्होंने मुझे कहा, आपने कभी सुना है वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड में दो देशों के बीच में आपस में फायरिंग? आज तक कभी नहीं हुआ है, इट हैज नेवर टेकन प्लेस। दो देशों के बीच में फायरिंग आज तक नहीं हुआ है। It did not happen in Operation Kargil. It did not happen in Operation Sindoor also. उनके बीच में फायरिंग नहीं हुआ। थोड़ा सा जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कुछ वर्ष पहले ले लद्दाख में हुआ था, वो भी फिजिकल कम्बैट हुआ था, वहां पे भी फायर आर्म्स यूज नहीं किए गए। और उस मेजर ने इतनी अच्छी बात हमें बताई, बोला कि विश्व के सबसे ऊंचाई की युद्ध भूमि में युद्ध का प्रोटोकॉल पता क्या है? प्रोटोकॉल ये है कि जिस जगह पर आप हो उस जगह को अगर आप सरवाइव कर सकते हो तो वो जगह आपकी, लेकिन जिस जगह पर आप बैठे हो अगर आप उसको सरवाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते, तो पड़ोसी वाला देश आ जाएगा, बहुत मुस्कुराते हुए बैठ जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। और फिर उस मेजर ने कहा, हमारी सबसे बड़ी चुनौती है प्रकृति, बहुत ज्यादा जो ठंड होता है। और उस मेजर ने हमें इतनी अच्छी बात इंग्लिश में बताया, उन्होंने कहा, स्वामी भाई, आउटसाइड नेचर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर इनसाइड। बाहर की जो प्रकृति है ना, वो प्रतिबिंब है हमारी आंतरिक प्रकृति की, इंटरनल नेचर। तो हम आंतरिक स्तर पर कितना शक्तिशाली हो, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूकंप आता है तो हम कहते हैं धरती मां इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और सुबह से शाम तक जो अंदर जो इरिटेशन और गुस्सा चल रहा है। सो माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, आप लोग दिल्ली और बहुत जगह से यहां पर माउंट आबू में आए हो, और आपको लगा होगा और आपको शायद भाई बहनों ने बताया भी होगा कि माउंट आबू बहुत अच्छा है ना, इट्स एट अ हाइट ऑफ 4,000 फीट। और जब आप यहां पे पहुंचे तो लगा, बाप रे, यहां पर भी थोड़ी बहुत तो गर्मी तो लगी रही है। वापस जब आप दिल्ली या मुंबई पहुंचोगे, एंड इफ द टेम्परेचर टचेस 45, 48, 50 degrees, देन डोंट ब्लेम द ओजोन लेयर डिप्लीशन अलोन, इट इज अवर इंटरनल नेचर, आंतरिक प्रकृति। विज्ञान जो होता है वो बाह्य प्रकृति को कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश करता है। आध्यात्म हमें यह सिखाता है, दोस्तों, हम अपने आंतरिक प्रकृति को किस तरह से मैनेज करें। साइंस ट्राइज टू कंट्रोल एंड मैनेज द एक्सटर्नल नेचर, स्पिरिचुअलिटी ट्राइज एंड हेल्प्स अस टू मैनेज अवर इंटरनल नेचर। आंतरिक प्रकृति को मैनेज करना इस इनर मास्टरी, और उसके विज्ञान को समझना इस सेल्फ लीडरशिप। आप सभी यहां जो बैठे हैं सभी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, सभी बहुत अनुभवी भी हैं।
और नेचुरली आप सभी बहुत सफल भी हैं। अगर मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा तो आप इतने सारे अपने प्रोजेक्ट्स की महिमा करेंगे और नेचुरली आपके वो प्रोजेक्ट्स की सफलता में आपका बहुत बड़ा योगदान भी है। अपने अपने क्षेत्र में आप बहुत सफल हैं। यू माइट हैव मैनेज्ड प्रोजेक्ट्स वर्थ हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रुपीस। आपके अंदर बहुत सारी टीम भी है। अब इतने सफल जब साइंटिस्ट इंजीनियर्स आर्किटेक्ट हमारे सामने पहुंचते हैं तो प्रश्न ये उठना चाहिए कि व्हाई इज द ब्रह्मा कुमारी स्पीकिंग अबाउट लीडरशिप, भले वो इनर लीडरशिप हो। कहीं ना कहीं आप ये महसूस करते होंगे या दूसरे महसूस करते होंगे तो आप तो लीडर तो हो ही ना, राइट? तो ये टॉपिक क्यों रखा गया, व्हाई इज दिस टॉपिक रिलेवेंट? आप में से कुछ ऐसे महानुभव भी होंगे जो शायद अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिटायर भी हुए होंगे, कुछ लोग होंगे जो शायद 10, 15, 20 साल या कम साल होगा रिटायरमेंट के लिए। लीडरशिप तो हमेशा लगता है कि भाई कहीं ना कहीं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी को मैनेज करना। रिटायरमेंट के बाद ये टॉपिक व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। मुझे याद आता है वंस आई वाज इनवाइटेड टू अ प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM लखनऊ में। तो जब मैं वो स्टूडेंट से मिल रहा था तो मैंने उनको पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर, दोनों में अंतर क्या है? और बच्चों को, क्योंकि उस समय AI भी नहीं था तो फटाफट ट्राई भी नहीं कर रहे थे, उस समय तो गूगल सर्च करने में टाइम लगता है। आज आप एक मिनट में आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। उस समय तो फैसिलिटी भी नहीं थी। तो मैंने कहा ओके आई विल हेल्प यू आउट, हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट, क्योंकि आप MBA के स्टूडेंट्स हो, मैनेजमेंट पढ़ाई करते हो, तो हाउ डू यू डिफाइन मैनेजमेंट? तो उसमें से एक विद्यार्थी ने खड़े, मैंने कहा बहुत सिंपल सहज सरल परिभाषा होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज ऑल मैनेजिंग रिसोर्सेस एंड मैनेजिंग द 5M, मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी। क्या बोला दोस्तों मैंने, तो जोर से बोलिए, मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी, राइट? मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा क्योंकि कुछ लोग यहां मुझे बहुत घूर के देख रहे हैं लेकिन अंदर सो रहे हैं और सोने का आपका अधिकार भी है, आपने हमें 4 बजे उठा दिया तो हम क्यों नहीं बैठ के सोएंगे। आई विल बी देयर विद यू फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर माय डियर स्वीट फ्रेंड्स। अगले आधे घंटे में अगर मैंने किसी को भी सोते हुए देखा तो बड़े आदर सम्मान के साथ विद लॉट्स ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट आपको यहां पर आकर बिठा दूंगा और आपको सेवा में लगा दूंगा। और आपकी सेवा ये होगी कि आपको यहां बैठकर सबको घूर के देखते रहना है और अगर सभा में कोई सो रहा है तो उनको भी उठाकर बाजू में बिठा देना, राइट? और आप ये देखेंगे एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू दिस एक्सपेरिमेंट। वहां पर आपको सचमुच नींद आ रही होगी लेकिन एक बार आप यहां आकर बैठ जाते हैं ना, बाप रे, आपकी नींद कहां गई पता ही नहीं चलेगा। मैंने इस विद्यालय में ये बात सीखी, जब जिम्मेवारी का ताज पहनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो शक्ति आ जाती है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं से वो एनर्जी जरूर आ जाता है। तो 5M की मैं बात कर रहा था, मैनेजमेंट इज ऑल मैनेजिंग मेन, मटेरियल, मनी, मशीनरी, मेथोडोलॉजी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई मैनेजर हो या गृहस्थ में रहने वाली गृहिणी भी मैनेज ही करते, दे मैनेज दिस रिसोर्सेस। बट वॉट इज अ लीडर? हम जनरल पार्लेंस में बहुत सारे लीडर्स का हम लोग एडजेक्टिव्स लगाते रहते हैं, समाज में लीडर, पॉलिटिकल लीडर, लेकिन रियल लीडरशिप मतलब ये होता है कि 5M को मैनेज करने वाली जो रिसोर्स है, द 6M एंड दैट इज द माइंड। मन जो है ये 5 रिसोर्सेस को मैनेज कर सकती है। तो लीडर वो होता है जो अपने मन को मैनेज करे और जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनके मन को मैनेज करने की शक्ति होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ मैनेजमेंट और फिर अपने टीम की मैनेजमेंट करना बहुत जरूरत है, राइट? तो मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा, बताइए LKG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन MBA तक इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट कितना प्रतिशत सिलेबस बच्चों आपको मन के बारे में सिखाया जाता है? और आजकल के बच्चे इतने सुंदर और इतने प्यारे होते हैं, एक खड़े होकर कहता सर आउट ऑफ सिलेबस सर, मन मन के बारे में नहीं पढ़ाते। तुम पढ़ते क्या और पढ़ाते क्या भाई? व्हाट आर वी लर्निंग एंड व्हाट आर वी टीचिंग? और मन के बारे में क्योंकि हमको कभी शिक्षा नहीं दी जाती है, एंड देयरफॉर यू सी द कॉन्फ्लिक्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब. सब जगह अपने अपने स्थान पर द सो कॉल्ड लीडर्स तो हैं, लेकिन आप दुनिया और समाज का सिचुएशन देखेंगे, इतनी कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, दे हैव गॉट देयर ओन रीजन. हम युद्ध क्यों करें? रशिया यूक्रेन का युद्ध कितने साल से चल रहा है? नेटो का मेंबर बनना नहीं बना, एवरीबडी हैज गॉट अ वैलिड रीजन. एक देश दूसरे देश से युद्ध करना स्वाभाविक है, वेरी नॉर्मल. एक काम करते हैं, हम भारत देश को ले लेते हैं, हम तो सब एक देशवासी है ना. बट वन स्टेट इज फाइटिंग विद अदर स्टेट, फाइटिंग इज नॉट अ गुड वर्ड. वन स्टेट है ना, संघर्ष करता है दूसरे स्टेट से. आई बिलोंग टू गॉड्स ओन कंट्री केरला. केरला इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद कर्नाटका, केरला इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद तमिलनाडु. किसके लिए कॉन्फ्लिक्ट है? रिवर वाटर शेयरिंग. सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, स्टेट इज ऑल्सो हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट. चलो एक काम करते, समय की मर्यादा है, मैं केरला के एक यूनिट परिवार को लेकर आता, वन यूनिट ऑफ अ फैमिली इन गॉड्स ओन कंट्री केरला. सेम कास्ट, सेम क्रीड, सेम रिलीजन, सेम ईटिंग हैबिट्स, एंड गुड न्यूज, सेम ब्लड ग्रुप ऑल्सो. तो घर के अंदर तो जन्नत होना चाहिए, स्वर्ग होना चाहिए. लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो घर के अंदर हो रहा है, इनसाइड अ होम स्वीट होम. और मैं स्टैटिस्टिक्स बताकर आपका मूड खराब नहीं करना चाहता, राइट? डिवोर्सेस से लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्यों हो रहा है? आइंस्टीन बड़े बुद्धिमान थे, कहते आइंस्टीन का आईक्यू जो था ना, इट वॉज 155 प्लस. मेरे आईआईटी के बच्चों का आईक्यू इज 105 प्लस. मतलब आइंस्टीन आपसे और हमसे थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान तो है ही. आइंस्टीन ने वर्षों पहले एक बहुत प्यारा सा डायलॉग कहा था, एंड आई कोट आइंस्टीन व्हेन ही सेड, इफ आई हैव गॉट वन आवर टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ, आई वुड स्पेंड 55 मिनट्स एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड ओनली 5 मिनट्स टू गेट ऑन टू द सोल्यूशन. इसका हिंदी अनुवाद क्या है दोस्तों? कि अगर सारे पृथ्वी की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए अगर मेरे पास एक घंटे का टाइम है, तो 60 मिनट में 55 मिनट मैं उस प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा और सिर्फ 5 मिनट उसके समाधान पर मैं सोचूंगा. सारे विश्व की रक्षा सुरक्षा, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, उसके लिए आइंस्टीन कहते. और नेक्स्ट डायलॉग आइंस्टीन बहुत अच्छा बोलते, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, आप सभी रिपीट करना, हमारी इंग्लिश भी सुधर जाएगी और अगर नींद आ रहा है तो जागृत भी हो जाएंगे और आपको आजू बाजू समझ में भी आएगा कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है, राइट? आइंस्टीन ने कहा था, सभी बोलिए, नो प्रॉब्लम, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि आजू बाजू जागृत हो जाए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट. इसका मतलब यह है कि अगर एक प्रॉब्लम है, आइंस्टीन कहते हैं उस प्रॉब्लम के लिए एक कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सिंपल भाषा में स्टेट ऑफ माइंड, हमारी मन की स्थिति. तो अगर कहीं पर भी विश्व में प्रॉब्लम है, परिवार से लेकर विश्व तक, उसका पीछे हार्डवेयर में हमको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका पीछे कारण है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर हमारी मन की स्थिति. वो एक व्यक्ति की स्थिति कारण हो सकता है या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस स्थिति हो सकता है. तो आइंस्टीन कहते हैं उसी कॉन्शियसनेस, उसी मन की स्थिति में रहते हुए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. और अगर उसी मन की स्थिति में रहकर अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को, वी विल टेक इट फ्रॉम बैड टू वर्स, बैड टू वर्स. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने भाई बहन हैं जो अपनी मन की स्थिति पर थोड़ा सा एनालाइज करते? आप अपने इस करियर को आप देखिएगा, सभी यहां पर सफल व्यक्तित्व बैठे, राइट? आपने जो सफलता पाई है व्यक्तिगत जीवन में या प्रोफेशनल जीवन में, हम सभी इसको एनालाइज करें. उस सफलता के पीछे हमारी मन की स्थिति कैसी थी? वॉज इट फुल ऑफ पीस, लव, जॉय, ब्लिस, हैप्पीनेस, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद के साथ, उस फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ मैंने वो सफलता पाई, या डर, भय, चिंता, स्ट्रेस, ईगो, जलसी, हेट्रेड, कंपटीशन, इनसिक्योरिटी, चेक करना जरूरत है कि हमारी फ्लो ऑफ एनर्जी कैसी थी, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, या डर, भय, चिंता, राइट, या दोनों का मिक्स, क्या कहेंगे? वाओ, कॉम्बो इफेक्ट कितना अच्छा लगता है ना, दोनों का मिक्स, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो परसेंटेज अगर देखा जाए तो इट वॉज मोर ऑफ डर, भय, चिंता। जैसे जैसे आप पिरामिड में आप ऊपर जाते रहते ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग इतने इंडस्ट्रीज ट्रैवल करते, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, जैसे 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 हम ऊपर जाते रहते उतना ही अंदर डर लगता रहता हमको, राइट। वी डू लॉट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डिफेंस फोर्सेस। जैसे बहन जी बता रहे थे, मेरा ये सौभाग्य रहा भारत के हर डिफेंस फोर्सेस को मुझे मिलने का और उनके तनाव को समझने का मुझे सौभाग्य मिला, राइट। अगर आप देखेंगे सियाचिन में भी वो लोग इतने सशक्त होते, दे हैव बीन फिजिकली ट्रेन्ड एंड मेंटली ऑल्सो ट्रेन्ड। लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये जानकर कि डिफेंस फोर्सेस में अगर चलो जवान और सैनिक अगर देखेंगे तो उनका वर्किंग कंडीशन ये वो से तो उनको प्रॉब्लम चैलेंज हो सकता है। अगर आप सियाचिन में जाएंगे तो बाप रे इतनी ठंड, हर चीज के लिए आपको केरोसिन यूज करना पड़ता है, एक टेंट टाइप का होता है, और दो तीन महीने अगर वहां पर आप रुक गए तो फिर जब आप जम्मू कश्मीर में आते हो या लेह लद्दाख में आते हो तो आप नजदीक जाएंगे तो आपके शरीर से वो केरोसिन की बदबू आती है। तो चुनौतीपूर्ण सिचुएशन सैनिक और जवान के लिए तो होते ही, वो कहीं पर भी पोस्टेड हो। लेकिन अगर मैं ऑफिसर्स की कैटेगरी की बात करूंगा तो उनको तनाव का कारण क्या है, अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड इट इज बीन शेयर्ड बाय द आर्मी पीपल टू मी एंड इट इज करेक्ट अक्रॉस ऑल डिफेंस फोर्सेस, यूनिफॉर्म फोर्सेस। जब कोई भी बंदा डिफेंस फोर्सेस में जाता है, एनडीए में ज्वाइन करता है, तो नेचुरली हजारों बच्चे ट्राई करते हैं, उसमें से बहुत कम लोग का सिलेक्शन होता है। फिर उनको भगाते दौड़ाते, एसएसबी इंटरव्यू कराते, जब वो भाग दौड़ कर लेते तो फिर वो छटके आते, फिर एसएसबी इंटरव्यू में जाते, तो इतने सारे बच्चों में से 250 बच्चे सेलेक्ट होते एंड दे कैन ज्वाइन अ वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, नेशनल डिफेंस एकेडमी। चार साल ये यंग बॉयज, अभी तो गर्ल्स भी फर्स्ट पासिंग आउट परेड, इट हैपेंड अ कपल ऑफ इयर्स बिफोर। तो जब बॉयज एंड गर्ल्स जब वो एंट्री करते हैं तो दे आर यंग, जैसे चंचल होते हैं, जैसे हर एडोलेसेंट होता है, लेकिन चार साल के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो दे आर कॉल्ड एज जेंटलमैन कैडेट। इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है एंड वी नीड टू सल्यूट द ट्रेनिंग प्रोसेस, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो चाहिए तो अपने देश के लिए जान भी दे सकते, वहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर व्हाई डज द स्ट्रेस हैपेंस। हमेशा उनको सिखाया जाता है यू शुड बी द बेस्ट बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष में यू कैन नॉट बी नंबर टू, यू शुड ऑलवेज बी द बेस्ट। मैं पीक परफॉर्मेंस और एक्सीलेंस की बात कर रहा हूं, ये आपका टॉपिक है, इनर मास्टरी फॉर एक्सीलेंस, पीक परफॉर्मेंस, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता। हमारे यहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगी, लेकिन वहां पर यू आर बिटवीन लाइफ एंड डेथ, देश बचे नहीं बचे सेकेंड थिंग, आप खुद ही जीवित नहीं रहोगे तो कितना सतर्क होना चाहिए। तो यू शुड बी द बेस्ट, और उनको हमेशा ये ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो कैरम कॉम्पिटिशन हो, चेस कॉम्पिटिशन हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, स्विमिंग हो, हॉर्स राइडिंग हो, या आपको अगर चढ़ना होगा तो आप नंबर वन ही होना, और धीरे 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 उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो नंबर वन बैठ जाता है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन पिरामिड में जब ये बच्चे आगे बढ़ते हैं, सब लेफ्टिनेंट के बाद जब लेफ्टिनेंट बनते हैं और लेफ्टिनेंट के बाद जब मेजर बनते हैं, तो बहुत सारे लोग काबिल लोग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का सिर्फ सिलेक्शन वो लेफ्टिनेंट से, चाहे मेजर, मेजर से कर्नल, ब्रिगेडियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनको ये ट्रेनिंग दी गई थी यू आर द बेस्ट, लेकिन जब प्रमोशन होता है तो उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है, कुछ लोगों को बिल्कुल सिलेक्शन ही नहीं होता है, और जैसे ही उनको लगता है रिजेक्टेड है, उसको सबसे बड़ा वो सदमा पहुंचता है कि आई एम नॉट द बेस्ट। वहां तक फिर भी ठीक है, लेकिन जब यूनिफॉर्म जब पहना जाता है ना, तो यूनिफॉर्म में हमेशा सितारे होते हैं। तो सेम कलीग्स, सामने वाला बंदा सेम बैचमेट था, उसका प्रमोशन हो गया, उसके सितारे बढ़ गए और मेरा सेम सितारा, और वो यूनिफॉर्म देखकर उसके पास ज्यादा सितारे हैं तो सलूट भी मारना चाहिए, वहां तक फिर भी ठीक है। प्रॉब्लम होता है घर घर की कहानी। पत्नी जी बैठे ना घर पर, कोई भी एक आर्मी कैंप में जो कमांडेंट होता है ना, उसकी जो वाइफ होती है, शी गेट्स द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, रिगार्ड और ओहदा मिलता है। तो अभी तक आजू बाजू बैठ के सखियां बात करती थी, अभी जैसे ही ब्रिगेडियर साहब को एक्स्ट्रा स्टार लग गया तो बहन जी एकदम सातवें आसमान पर, और वो आकर सामने बैठती है, एंड द सखी हैज टू सिट इन फ्रंट ऑफ हर कॉन्शियसनेस। और जो भी यूनिफॉर्म फोर्सेस है, और सबसे ज्यादा देखा गया है पुलिस फोर्सेस में, आर्मी ने भी एयरफोर्स का सिविलियंस के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता है, उनकी एक अपनी एक अलग दुनिया होती है। लेकिन अगर आप पुलिस फोर्सेस में देखेंगे तो वो यूनिफॉर्म पहनकर जहां पर भी जाते हैं उनको वो पावर यूनिफॉर्म से नजर आता है। लेकिन जैसे रिटायरमेंट हुआ, यूनिफॉर्म खूटी में गया तो सलूट भी गया, लाल बत्ती भी गया, और अचानक उसको लगता है खालीपन। ऐसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो डेथ यूनिफॉर्म फोर्सेस में होता है इज द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट, क्योंकि अचानक उसको लगता है मैं खाली हूं। सुसाइड की बात अगर मैं कहूं तो यूनिफॉर्म नहीं, डेथ नेचुरल भी हो सकता, हार्ट अटैक भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सुसाइड की बात करूंगा तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ए प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, लेकिन जो मैं स्टैटिस्टिक्स बताने वाला हूं इतना कोई अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूंगा इन अ पब्लिक डोमेन, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट अपने में बहुत अच्छा है। पिछले 5-6 महीने में देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ सुसाइड केस हैपनिंग इन दैट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, एट द ग्रेजुएशन लेवल, एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इवन एट द पीएचडी लेवल, हर महीने में 2-2 आत्महत्या हो रहा है। तो नेचुरली इंस्टीट्यूट अथॉरिटीज वे वेरी कंसर्न अबाउट इट, और फिर नेचुरली गवर्नमेंट इज ऑल्सो कंसर्न, क्योंकि एक अच्छा इंस्टीट्यूट में ऐसे सुसाइड्स होते हैं तो कोई अच्छा एक इमेज नहीं बनता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, और वेरी वंडरफुल एक्सपर्ट एंड विथ अ वेरी राइट न्यूट्रल एटीट्यूड, ऐसा नहीं कि दे वॉन्ट टू प्लग इन कि उसका कारण इंस्टीट्यूट है या प्रोफेसर है, एकेडेमिक्स है, नो, बहुत अच्छे लोगों की कमेटी बैठाई और बोला वी आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि भाई इतने सारे सुसाइड इस कैंपस में क्यों हो रहा है, और वो जितने बच्चों ने भी आत्महत्या की उनको आप स्टडी करिएगा। कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने वो सारा स्टडी किया, उनके प्रोफेसर से मिले, टीचर्स से मिले, उनके पेरेंट्स से मिले, उनके कलीग से मिले, उनके जूनियर सीनियर सबसे बात किया उन्होंने, एंड बस कुछ समय पहले वो रिपोर्ट आया था, रिपोर्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ एक कारण बताए थे, लेकिन उसमें जो फाइंडिंग था कि एक भी व्यक्ति का, स्टूडेंट का जो कारण ऑफ सुसाइड डजंट मैच विद द अदर स्टूडेंट, एब्सोल्युटली नॉट, नो मैचिंग एट ऑल, कोई मैच करते ही नहीं है। कुछ लोगों को शायद एकेडमिक परफॉर्मेंस का स्ट्रेस हो सकता है, कुछ लोगों को रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, लेकिन सबका कारण वो सेम नहीं था, इट वॉज वेरिंग इन परसेंटेज बट द एंड रिजल्ट वॉज द सेम। और आपको आश्चर्य होगा माय डियर स्वीट फ्रेंड्स, जो नंबर 1 कारण था पता वो क्या था, द फर्स्ट कारण जो उन्होंने कहा, उन्होंने लिखा सुसाइड क्लस्टर इफेक्ट, ये शब्द मैं उठा के बता रहा हूं आपसे, सुसाइड क्लस्टर इफेक्ट, मतलब क्या है क्लस्टर इफेक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आत्महत्या के इतने केसेस आ रहे हैं, द एक्सपोजर लीडिंग टू सुसाइड हैपनिंग इन Not only their campus but all engineering institutes across the country, वो इतना ज्यादा हो रहा है कि naturally suicide is becoming very very normal in nature. जिसको अगर हम atomic भाषा में कहेंगे it is called as the chain reaction. एक हो रहा है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, और ये जो है ये बहुत बहुत dangerous trend पे जा रहा है, right? इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट वेल नोन फॉर हिज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. उन्होंने जैसे ही ये कमेटी का रिपोर्ट आया, उन्होंने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंज किया, एक बहुत बड़ा चेंज किया. जो उनके पास डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर था, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, जो बच्चों के हॉस्टल फैसिलिटीज है ना, जो उनके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज और उनका कैंटीन का भोजन, वो सारा जो एडमिशन प्रोसेस वो सारा देखता है, इट इज कॉल्ड एज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर. वो पोस्ट को तो रखा, लेकिन एक और नया पोस्टिंग किया, डीन स्टूडेंट्स वेल बींग, डीन स्टूडेंट्स वेल बींग. और जैसे ही उस इंस्टीट्यूट ने एक नया प्रोफेसर को अपॉइंट किया, बाकी सभी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑटोमेटिकली एज अ पॉजिटिव चेन रिएक्शन वो करने लगे. एंड दिस इज एग्जैक्टली सीन जो हमारे लेटेस्ट जो 2022 में जो नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स मिला, इट वॉज इन क्वांटम इंटेलिजेंस. तीन फिजिसिस्ट को नोबेल प्राइज मिला इन क्वांटम इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम टेलीपोर्टेशन. क्वांटम इज ऑल अबाउट फोटॉन्स. उन फिजिसिस्ट का नाम अगर लेना चाहूं तो द नेम बिलोंग्स टू एलियन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर, एंटन सेलिंगर. 2022 में नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स ये तीन फिजिसिस्ट को मिला, राइट? उन्होंने क्या पाया? व्हाट वाज द स्टडी? उनका स्टडी ये था कि दो फोटॉन्स आर एंटेंगल्ड विथ ईच अदर. दे यूज द वर्ड एंटेंगलमेंट. अगर दो फोटॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं, एक फोटोन को आप यहां पे रखिए, एक फोटोन को आप विश्व में कहीं पर भी लेकर जाइए, राइट? तो उन्होंने ये पाया कि इस फोटोन को जो मैं फ्रीक्वेंसी दूं, जो मैं वाइब्रेशन दूं, वो फोटोन विल आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन द सेम फ्रीक्वेंसी. इट्स कॉल्ड एज क्वांटम टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन. माई पीएचडी जो रिसर्च एरिया, इट इज इन इमोशनल एंड क्वांटम इंटेलिजेंस. मैं फोटॉन्स पर काम नहीं करता, मैं इमोशंस पर काम करता हूं. इमोशन, ई प्लस मोशन, उसको अगर दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो इट इज एनर्जी इन मोशन, इमोशन कहते हैं. बहुत सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं. मेरे मोबाइल में राइट कुछ एक डाटा है, आपके मोबाइल में कुछ डाटा है. अगर आप कहेंगे स्वामी भाई जो भी आपने स्टडी रिसर्च किया है क्वांटम और इमोशनल में, आप उसका डाटा हमको दे सकते क्या? क्यों नहीं देंगे, जरूर देंगे आपको. तो कैसे हम वो डाटा ट्रांसफर करें? हम कहेंगे काम करिए, आप अपना ब्लूटूथ ऑन करिए. मैं भी ब्लूटूथ ऑन करता हूं और फिर मैं कहता हूं आपका कौन सा मोबाइल है? आप कहेंगे आईफोन है, सैमसंग है, नोकिया है, जो भी है. तो फिर मुझे वो दिखाई देता है लिस्ट में, और लिस्ट में मैं आपका वो मोबाइल को ढूंढता हूं और मैं पेयरिंग करता हूं. तो आपको मैसेज आता है, स्वामी भाई वॉन्ट्स टू एंटेंगल विथ यू. पेयरिंग बोलते हैं उसको शब्द. तो आप यस करते हैं, मैं भी यस करता हूं, और जैसे ही मैं यस करता हूं, मैं यहां से डाटा भेजता हूं. इट इज वायरलेस ट्रांसफर ऑफ डाटा. कुछ समय के बाद वो डाटा आपके पास आ जाता है. अब ये ब्लूटूथ हमारे सबके पास है तो इस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि इट हैपेंस. अब अगर एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ ये डाटा ट्रांसफर कर सकता है, तो आप और हम तो इमोशनल ह्यूमन बींग्स हैं. आप सभी यहां जो बैठे ना, आपका व्हाट्सएप का एक स्वीट फैमिली होगा, सब स्वीट फैमिली में कुछ मैसेज भेजते हो, खास करके अपने बच्चों के लिए, ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फिर बार बार देखते हो, छोटू देखा कि नहीं देखा. भले वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन गया, मां के लिए तो छोटू तो छोटू ही है. कुछ समय के जैसे ही आपको डबल क्लिक लगता है, ब्लू, वाव, मां को कितना अच्छा लगता है कि छोटू भले अभी आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहा है, लेकिन ही हैज सीन योर मैसेज. अब वो मैसेज देखने के लिए उसको टाइम लगा, लेकिन जैसे ही आपने व्हाट्सएप किया, वो तो एक सेकेंड में आपके बेटे के मोबाइल में पहुंच गया ना. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने जो सोचा, जैसे ही आपने सोचा वो आपके बच्चे तक पहुंच गया. मैं एक बार अमृतसर में कुछ सेवा के लिए गया था, तो एक फैमिली आई, बोला स्वामी भाई हमको दीदी ने कल आपको जो सेवा का स्थान है वहां पर लेके जाने का है ना, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हम आपसे, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था वहां मिलने के लिए आए थे मुझे. तो मैंने कहा अच्छा, मोस्ट वेलकम. तो बोला स्वामी भाई, फिर उन्होंने फोन करके पूछा कि हमारे दो जुड़वे बच्चे, दे हैव गॉट ट्विंस, बोला कल उनका सीबीएसई का 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, तो हम आपसे मिलने के लिए आ ही रहे हैं, तो अगर आप ओके करेंगे तो आप हमारे बच्चों से मिलेंगे क्या? मैंने कहा कल उनका एग्जाम है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी? बोला बस स्वामी भाई आप उनसे मिलना, शेयर योर गुड वर्ड, गुड विशेस, ब्लेसिंग्स. तो मैंने कहा हाँ, मोस्ट वेलकम, ले आइए. तो एक दिन पहले की बात है, वो दोनों जुड़वे बच्चे को लेकर आए, बॉय एंड अ गर्ल अपेयरिंग फॉर द 12th सीबीएसई एग्जाम इन द नेक्स्ट डे. तो मैंने उनको कहा कैसा चल रहा है पढ़ाई, ऑल प्रिपेयर्ड, यस यस यस. मैंने कहा ऑल द बेस्ट, यानी ईश्वर की याद में एग्जाम लिखना, एवरीथिंग विल बिकम ओके, है ना, श्रेष्ठ स्वमान लेना कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, ओके. और ज्यादा उनका वक्त नहीं लिया क्योंकि कल उनका एग्जाम है. मुझे ऐसा लगा मम्मी डैडी ने शायद जबरदस्ती उनको धक्का मार के ले आए, स्वामी भाई से मिलो, स्वामी भाई से मिलो. आई कुड अंडरस्टैंड, बट दे वर वंडरफुल चिल्ड्रन. ऐसा कुछ उनके चेहरे पे नजर नहीं आया. तो मैंने कहा बस बस, फिर मैंने कहा आप लेके जाइए टुमारो, है ना, यू कम ऑन टाइम, उनके पेरेंट्स से बोला. दूसरा दिन वो माता पिता पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे, चलो स्वामी बहन चलते. तो मैंने कहा अच्छा बच्चे चले गए क्या, आज उनका एग्जाम है? तो मम्मा ने घड़ी देखा, बोले अरे स्वामी भाई अभी वो एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहे होंगे. मैंने कहा अच्छा, बोले यस नाउ इज द टाइम. तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम लोग 5 मिनट के बाद जाएंगे. बोला क्यों? मैंने कहा अभी वो बच्चे जो है ना एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे, कितने भी पढ़ाई किए, देयर इज अ लेवल ऑफ एंग्जाइटी बिफोर यू गो टू एन एग्जामिनेशन हॉल. मैंने कहा काम करते हैं, उनको एग्जाम हॉल तो जा रहे ना, हम 5 मिनट बैठकर अपने आप को स्टेट ऑफ साइलेंस में लेकर जाते हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं. बोला क्यों? मैंने कहा अगर माता पिता उस इनिशियल 15-20 मिनट्स पे, इफ पेरेंट्स आर इन अ स्टेट ऑफ पीस, ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस ऑफ पीस विल रीच टू योर किड्स. नो मैटर वो हार्वर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं, या आईआईटी का एग्जाम लिख रहे हैं, या 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं, हमारे थॉट प्रोसेस इतना तेज भागता है. इसे जैसे ही छोटा बच्चा जन्म लेता है, मां उसको बहुत प्यार से जादू की झप्पी लगाती है. तो जैसे ही वो जादू की झप्पी लगाती है, वो छोटू क्या करता, मां के साथ इमोशनल पासवर्ड लॉग इन तक पेयरिंग हो जाता है. फिर मां क्या करती है, उस छोटू के बापूजी को बुलाते हैं. और जैसे ही पिता आते हैं, तो मां क्या करते हैं, छोटे से बच्चे को उसके पिता के गोदी में कहते हैं और कहते हैं छोटू ये तेरे पापा हैं. और जैसे ही वो छोटू पापा के गोदी में जाता, वो एक आंख खोल के देखता, अच्छा यू आर माई पापा, इमोशनल टक. और छोटू जब बड़ा होता है, तो माता पिता बड़े प्यार से उनको स्वामी सर के पास लेकर आते. यहां बैठकर आप जो सोच रहे हो 100% लिख कर दीजिए, इट इज रीचिंग योर किड्स बैक होम. तो आप में से, हाँ तालियां बजाने का मन कर रहा तो बजा लो. तो आप में से कौन कौन माता पिता ये महसूस करते हैं कि आपके बच्चे, है ना, जहां पर भी वो हमेशा खुश रहें, वो जरा हाथ उठाएं. आजू बाजू कोई सो गया तो बुला लो. वाह. सो माय डियर स्वीट पेरेंट्स, आपको क्या करना पड़ेगा, ये अगले 3 दिन यू शुड बी हैप्पी. मैं इसलिए यहां पर ज्ञान सरोवर की बात कर रहा हूं क्योंकि इस ज्ञान सरोवर में वो वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हैं, जो मोहन सिंगल भाई जी कल ना रिसेप्शन सेशन में बता रहे थे, इट विल हेल्प यू. लेकिन ज्ञान सरोवर में आकर अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, यहां पे एसी नहीं है, है ना, अकोमोडेशन ठीक नहीं है, सारे फैकल्टीज कोई खास नहीं है, यहां बैठकर आप सोचते रहो, आपका बच्चा बेस्ट ऑफ बेस्ट हॉस्टल में जाएगा, अच्छे से अच्छा एसी भी होगा. वो फोन करके कह गया, मम्मा मैं यहां बिल्कुल ठीक नहीं हूं. एसी इज नॉट अ प्रॉब्लम, एसी इज नेवर एन इश्यू, इट्स एन इश्यू ऑफ योर इमोशंस. सो माय डियर स्वीट पेरेंट्स, हेल्थ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग बोलते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करिए, सभी बोलिए अर्ली टू बेड, जोर से बोलिए अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन विमन डैश डैश डैश. वाह, हेल्दी वेल्दी वाइफ. कितना अच्छा लगा ये जानकर के अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ये तो हमारी टीचर बचपन में हमको सिखाती थी. नहीं, मैन एंड विमन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी बहनें बैठी है सर जी. या रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना. तो कौन कौन माता पिता चाहते हैं कि आपके बच्चे और आपके पोतरे धोतरे सुबह जल्दी उठे, वो जरा हाथ उठाओ. हाँ, तो कल सुबह 4 बजे पहुंच जाना यहां पर. तो आपको क्या लगता है 4 बजे में ऐसे उठा रहे आपको? नो, इट इज विद अ वेरी क्लियर कट पर्पस. मैं हाथ नहीं उठवाना चाहता हूं जो यहां पे 4 बजे आए. नो, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट दैट कंपेरिजन बिटवीन दोज पीपल हु गॉट अप एंड नॉट. लेकिन वो सुबह अगर आप 4 बजे उठते हो, शायद आपको मेडिटेशन नींद आती होगी यहां बैठकर, शायद जो मेडिटेशन करा रहे हो समझ में नहीं आता होगा, नथिंग नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे आप उठे आप अपने बच्चों के लिए लीडर बन गए। यू आर नॉट जस्ट अ मैनेजर, यू आर अ लीडर। आपने उनको जाकर फोन करके नहीं बोला कि मैं 4 बजे उठूंगा आप भी उठो, नो यू डिड नॉट से दैट। बट आप उठे, यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ टू एन एनर्जी कॉन्शियसनेस। तो लीडरशिप का मतलब ही ये है कि जो सिस्टम की जो एनर्जी जो ओवरऑल बहुत नेगेटिव हो गई है, उस एनर्जी लेवल को उठाना। इसे देश के बापूजी बहुत अच्छे से बात कहते थे। वो कहते थे, आई मस्ट बिकम द चेंज आई विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो परिवर्तन मैं विश्व में देखना चाहता हूं, महात्मा गांधी जी कहते थे, उस परिवर्तन का स्वरूप मुझे बनना है, आई शुड बिकम। और सर विश्व के बापूजी परमात्मा कहते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो अगले 3 दिन अगर हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सके, चाहे कैसे भी सिचुएशन हो, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रह्मा कुमारीज, आई अपोलोजाइज। शायद आपकी अपेक्षाएं और आपकी एक्सपेक्टेशन से हम शायद उतर नहीं पा रहे, हमारे अंदर कमी है, मैं पब्लिकली उसको स्वीकार करता हूं। हाँ, कुछ लोगों को बियॉन्ड, लेकिन कुछ लोगों को एसी का प्रॉब्लम हो रहा है ना भाई साहब, इसको उनके लिए बोल रहा हूं मैं। कुछ लोगों को लग रहा है एक कमरे में 10 लोग को डाल दिया है, आई एम स्पीकिंग इन जनरल, क्योंकि आप लोग सभी अपने अपने घर में एसी में और आराम से राइट रहते, बड़े बंगलो होंगे, लेकिन यहां पर तो कुछ भी अगर ऊपर नीचे होगा, ये 3 दिन आपको ये जो मेडिटेशन का ऑरा मदद करेगा। और जैसे आप कहीं पर भी डिस्टर्बेंस फील करते हैं और वहां पर आपको ब्रेक लगाने की अगर शक्ति आ गई, यू आर डूइंग ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द होल वर्ल्ड एंड द होल वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अगर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अगर अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं भी भारतवासी से कनेक्टेड। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे पेट्रोल कम करो, एनर्जी कंजर्वेशन करो, तो कितना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सो माय डियर फ्रेंड्स, द साइंस ऑफ लीडरशिप, हमारी बहन जी आ गई, वो संकेत दे रही, बस ओम शांति करो। हम समझ गए, इशारों की भाषा हम समझते हैं, है ना। तो मैं आज आपको 3 फॉर्मूला, 3 चीजें बताकर मैं एंड करूंगा। द फर्स्ट इज द फॉर्मूला ऑफ साइंस ऑफ लीडरशिप, इनर लीडरशिप फॉर्मूला। सभी सीधे बैठे, सभी जागृत हैं, बहुत अच्छा। सभी बोलिए आई, थोड़ा जोर से बोलो, डराइए नहीं ना, आप डरा देते भाई, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो आई, और थोड़ा प्यार भरिए आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, बट आई कैन टेक एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस डैश डैश। क्या डैश डैश, वाओ, इट वॉज फिल ऑफ द ब्लैंक, रिक्त स्थान पूर्ति करो। आई हैव नो कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस विथ मी, मेरे साथ जो चल रहा है उसका कोई कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। कोई क्या बोले, कैसे बोले, मुझे रिस्पेक्ट दे, आई गॉट नो कंट्रोल, बट आई ओनली गॉट 1 कंट्रोल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी, विथ मी एंड विद इन मी। विथ मी इज मैनेजर, विद इन मी इज लीडर, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड इज द मेथडोलॉजी, सभी मेरे साथ बोलिए, वेयर माइंड गोस अटेंशन गोस, वेयर अटेंशन गोस एनर्जी फ्लोस, वेयर एनर्जी फ्लोस लाइफ ग्रोस। मतलब जहां आपका मन जा रहा है वहां भावनाएं जा रही है, मन और भावना जहां जा रही है उसका ऊर्जा धीरे धीरे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जैसी आपकी ऊर्जा होगी वैसा हमारा जीवन बन जाएगा, और जैसा मेरा जीवन बन रहा है वैसे मैं अपने चारों तरफ जहां पर भी एंटैंगलमेंट है उन सब का जीवन बना रहा हूं। दैट्स द मेथडोलॉजी। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि जो हमने थ्योरी सुना उसको हमें धीरे से प्रैक्टिकल में लेकर आना। तो आज जब भी 2-3 दिन का अभ्यास करिएगा, जैसे अभ्यास करेंगे, जैसे आप घर में जाएंगे आपके बच्चे आपका खिला हुआ चेहरा देखकर पूछेंगे, पापा आपका चेहरा इतना खिला हुआ, रूहे गुलाब, इतना खुशनुमा कैसे? तो कहेंगे बच्चे वो 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था ना, वहां जाकर मुझे समझ में आया मैं कौन हूं। तो छोटू पूछेगा पापा आप कौन हैं? तो बड़े प्यार से अपना हाथ उस बच्चे के सर पर रखना, उसको बहुत प्यार से देखना और पूछना छोटू डू यू नो हु आर यू? पापा बताइए ना मैं कौन हूं, हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रेवल। पूछेगा पापा मैं कौन हूं? तो बड़े प्यार से कहना, सभी बोलो बच्चे, डराओ नहीं, प्यार से बोलो बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा पापा आप कौन हो? तो प्लीज मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूं, प्लीज ठीक है जिसको बताना बताओ, लेकिन इंटरनली सारे डिफेंस फोर्सेस को हम यही बताते हैं समाधान क्या है, ये यूनिफॉर्म इज नॉट योर रियलिटी। जो स्टार आपका इधर उधर 2-3 स्टार लग जाता ना, वो स्टार को धीरे से उठाकर यहां रखो, अदृश्य सितारा। तो आज से लेकर अगले 3 दिन यह अभ्यास करना है। सभी बोले आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल, आगे बोलिए, और छोटू आप पर मुस्कुराएगा, पापा ये मेरा एलकेजी का सिलेबस है, इट्स अ रियलिटी, आत्मा चमकता हुआ सितारा, मैं शरीर से अलग कुछ समय के लिए बस रोल प्ले कर रहा हूं, अजय अमर अविनाशी। लास्ट 1 मिनट लेकर मैं अंत करूंगा, हमारी दीप्ति बहन आपको एक मेडिटेशन की यात्रा पर भी लेकर जाएंगे। सदा मेडिटेशन क्या है, मन बुद्धि को आउटवर्ड वर्ल्ड से धीरे से पहले इनर वर्ल्ड में लेकर गया, यहां पर लेकर आए, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अपने आत्मा के स्वधर्म को कर्म में लेकर आना। जैसे आपको लगता है ना मैं मैनेजर हूं तो नशा चढ़ता है, उसी तरह आत्मा का स्वधर्म। और तीसरा धीरे से आपको बताया जाएगा इन अपवर्ड जर्नी, एन अपवर्ड जर्नी, ये जो है जब आप जितना फील करेंगे महसूस करेंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, राइट, जस्ट सी योरसेल्फ एज अ स्पार्कलिंग स्टार। आप में से साइंटिस्ट इंजीनियर्स को लगेगा कि स्वामी भाई क्या कभी आपने किसी आपने आत्मा को देखा है? मेरा यह सौभाग्य रहा भारत के हर एटॉमिक पावर स्टेशन में जाने का सौभाग्य मिला, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से सारे एटॉमिक पावर स्टेशन। तो जब भी मैं एटॉमिक साइंटिस्ट से मिलता हूं मैं उनसे बड़े प्यार से पूछता हूं क्या आपने अणु को देखा है क्या? एटम, द आंसर इज एन एम्फेटिक नो, वी कैनॉट सी, लेकिन एटम की एनर्जी कितनी ज्यादा है। उस स्थूल एटम को अगर हम नहीं देख सकते लेकिन उसकी शक्ति को महसूस कर सकते तो मैं कितना अदृश्य ऊर्जा हूं, राइट। विथ ऑल गुड विशेस माई प्रेयर्स टू द ऑलमाइटी टू ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, योर स्वीट फैमिली एंड योर ऑर्गेनाइजेशन विथ लॉट ऑफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस and lots of success. आप हमेशा खुशनुमा रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद में रहे। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति, नमस्कार एंड जय हिंद।
जो भी हमने अनुभव किया है उस अनुभव को मन बुद्धि में समाते हुए गहन मेडिटेशन करेंगे, तो आप सब सीधे बैठ जाए। आंखें खुली रखें और हम चलते हैं अंतर जगत की यात्रा में। बाह्य सभी बातों से उपराम होकर अपने मन और बुद्धि को प्रकृति के बीच में एकाग्र करें। जहां हम तिलक करते हैं वो हमारे आत्मा का स्थान है। मन और बुद्धि रूपी तीसरे नेत्र से अपने आप को देखें। मैं आत्मा राजा हूं। मैं आत्मा सर्व कर्म इंद्रियों का मालिक हूं। सब कर्म इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर मुझ आत्मा राजा में है। मैं आत्मा राजा अपने मन और बुद्धि को इस दुनिया से पार सूर्य चांद सितारे तारा गणों से पार इस भौतिक दुनिया से पार सूक्ष्म वतन से भी पार परम धाम जो लाल प्रकाश की दुनिया है जहां शांति ही शांति है जहां कोई आवाज नहीं है साइलेंस ही साइलेंस है मैं आत्मा राजा परमपिता परमात्मा की सन्मुख बैठी हूं मेरे परमपिता परमात्मा जो ओशन ऑफ लव है जो ओशन ऑफ पीस है उनसे शांति की किरणें मिस स्वयं में समा रही हो परमात्मा मुझे देते जा रहे हैं मैं शांति की अनुभव करती जा रही हूं यहाँ कितनी शांति है वो मेरा पिता है मेरा सर्व संबंधी है वो परमात्मा निराकार शिव है उनकी मैं संतान हूं वो मेरे साथ है उनकी सर्व शक्तियां मेरे साथ है शांति की गहरी अनुभूति में खो जाए, समा जाए। शुक्रिया शिव बाबा, धन्यवाद शिव बाबा। आपने अपने घर में मुझे बुलाया, ये हमारा घर है जहां इनर शांति है जिसको दुनिया ढूंढ रही है, आज मुझे मिल गई। शुक्रिया शिव बाबा, धन्यवाद। धीरे धीरे आ जाए नीचे, इस देह रूपी वस्त्र में ओम शांति 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 ओम शांति।